This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी से चले जाने पर अंग्रेजी सेना ने शहर और किले को अपने अधिकार में कर लिया। उस समय गोरे सिपाही सन 57 के जून महीने में अपने बंधुओं के मारे जाने को याद करके झांसी निवासियों की निर्दयता पूर्वक गोलियों से हत्या करने लगे। इस समय झांसी में कोई लड़ाके वीर नहीं थे। इस कारण जो कोई निरअपराधी और निरुपद्रवी मनुष्य शहर में दिखाई पड़ता, उसको गोरे सिपाही गोली से मार डालते थे। इस समय झांसी के लोगों की जो दुर्दशा हो रही थी, उसका वर्णन करना मुश्किल है। एक और कत्लेआम हो रहा था और गोरे सिपाही मानव जीवन की क्षण भंगुरता सिद्ध करने के लिए यमदूतों की तरह घूम रहे थे, और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना झांसी के प्राचीन वैभव को लूट कर नष्ट कर रही थी। सारांश ये है कि इस समय अनेक प्रकार की भयानक विपत्तियों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। शहर शमशान के समान लग रहा था। रास्ते में लाशों के ढेर पड़े दिखाई दे रहे थे। बहुत से आदमी जिनको गोली लगी थी, सड़क पर छटपटाते और करहाते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे। गरीब लोग खाने के लिए भीख मांगते घूम रहे थे। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि जानवर बेमालिक होकर इधर उधर दौड़ते घूम रहे थे। जो लोग घास के ढेर में जाकर छिप जाते, उन्हें गोरे सिपाही उस ढेर में आग लगाकर जला डालते थे। जो लोग कुएं में कूदकर अपने प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करते थे, वो वहां भी सुरक्षित नहीं रह पाते थे। इस प्रकार 3 दिन के लिए झांसी में बिजन बोला गया। अंग्रेजी सेना ने अपनी वीरता और बहादुरी के बदले झांसी को लूटने की इजाजत ली थी, किंतु सेना के लोग तो इसके पहले से ही लूटमार कर रहे थे। सोना, चांदी, जवाहरात आदि लाखों रुपए का धन जो कुछ उनके हाथ लगा, उसी को लूटकर उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। तीसरे दिन राजमहल को लूटने की बारी आई। राजमहल में कई पीढ़ियों की संपत्ति थी। पेशवाओं के समय से बुंदेलखंड के राजाओं से प्राप्त किए हुए अनेक बहुमूल्य रत्न खजाने में थे। पन्ना की खान से निकले हुए अनेक अप्रतिम हीरे भी वहां थे। सरकारी सेना ने महल में घुसकर जो कुछ पाया सब लूट लिया और शेष वस्तुओं को नष्ट कर डाला। इस लूटमार का कुछ वर्णन डॉक्टर लो ने किया है, वह सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक में दिया है। बहुत सारे अंग्रेज ग्रंथकारों ने इसका वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं दिया है। मिस्टर जॉन हेमरी सिल्वेस्ट ने ये लिखा है कि झांसी में गोरों ने जो लूटमार की, उसके कारण सबसे बड़ी हानि ये हुई कि उन लोगों ने झांसी के प्राचीन पुस्तकालयों को भी नष्ट कर दिया। धन संपत्ति और रत्न जवाहरत फिर मिल सकते हैं, राजमहल फिर बन सकता है। सोने चांदी की कुर्सियां और अनेक प्रकार के आभूषण आदि सब बना लिए जा सकते हैं, परंतु प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का फिर से संग्रह कर पाना असंभव है। मुसलमानों पर जब ये कलंक लगाया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं की प्राचीन पुस्तकों और मूर्तियों को नष्ट कर बहुत संकीर्णता का परिचय दिया, तब झांसी के एक प्राचीन पुस्तकालय को जलाने वाले ये लोग उसी दोष से कैसे बच सकते हैं? झांसी के पहले सूबेदार रघुनाथ राव से लेकर अंतिम महाराजा गंगाधर राव तक सारे राजपुरुषों ने प्राचीन पुस्तकों को संग्रह करने में अपना धन और समय व्यय किया था। चारों वेद, उनके भाष्य सहित सब शाखाओं के सूत्र, टीका सहित स्मृति, सारे शास्त्र पुराण ग्रंथ झांसी दरबार के पुस्तकालय में थे। इन धर्म विषयक ग्रंथों के अलावा ज्योतिष, वैद्यक, नाटक, काव्य आदि विविध विषयों के भी अनेक ग्रंथ थे। यदि झांसी के 400-500 कोस पर भी किसी प्राचीन या नवीन ग्रंथ की खबर मिलती थी, तो तुरंत वहां लेखक भेजा जाता था और उस ग्रंथ की नकल दरबार पुस्तकालय में मंगवा ली जाती थी। झांसी दरबार के पुस्तकालय के ग्रंथों को देखने के लिए कभी कभी काशी के विद्वान तक वहां जाते थे। इस प्रकार बहुत मेहनत से जो पुस्तकालय संग्रह किया गया था उसे अंग्रेजी सेना ने बिना कारण ही नष्ट कर दिया। किला, शहर और राजमहल लूटने के बाद अंग्रेजी सेना ने झांसी की प्रसिद्ध देवी महालक्ष्मी के मंदिर पर हमला किया और वहां के सारे आभूषण आदि लूट लिए। पता चलता है कि श्री महालक्ष्मी देवी अपने वैभव और बहुमूल्य अलंकारों से ऊब गई थी। 3 दिन गोरों ने शहर को खूब मनमाने तरीके से लूटा। 4th दिन मद्रासी पलटन ने तांबा, पीतल आदि धातु के पदार्थों की लूट मचाई। इसके बाद हैदराबाद की पलटन कपड़े लूटने लगी और अन्य लोग अनाज लूटने लगे। इसी तरह लगातार 7 दिन शहर में लूट होती रही। लगता था कि ईश्वर ने झांसी के लोगों को उनके पहले के कर्मों का ये भयानक फल दिया है। 8वें दिन सरकार ने ढिंढोरा पिटवाकर माफी की सूचना प्रकाशित की और शहर के लोगों को बिना डर के रहने को कहा। जो लाशें सड़कों पर पड़ी थीं, उनको उठवाकर उनकी अंतिम क्रिया की गई। हजारों लोगों को शहर में भेजकर रास्ते साफ कराए गए। जिन मोहल्लों में आग लगी थी वहां पानी से आग बुझाने का प्रबंध किया गया। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट आदि जानवर जो जगह जगह पर मरे कटे पड़े थे वे सब इकट्ठा किए गए और शहर के बाहर एक खंदक में गाड़ दिए गए। इस तरह उस दिन सरकार ने सारे शहर को साफ और शुद्ध किया। झांसी में ढिंढोरा पिटने के 2रे दिन महल के सामने बाजार लगाया गया। लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार चीजें लेकर फिर कुछ दिनों तक संसार में रहने की तैयारी की। शहर के बाहर अंग्रेजी छावनी में लूटा हुआ सामान रोज नीलाम किया जाता था। इस विषय का उल्लेख साहब ने भी किया है। वे लिखते हैं, द प्राइस एजेंट, झांसी की लूट और कालपी की लड़ाई, चौक ऑफ द मनी, jewels and other valuable found in the palace and town. The sales were going on daily in camp for the disposal of prize goods and property that once belonged to officers who had died in action. ladai ka upyogi saman aur hathi ghode aadi sindhya sarkar ne khareed liye। बाकी सामान अन्य राजाओं और रईसों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार नीलामी में ले लिया। इस तरह झांसी के प्राचीन राज्य वैभव का अंत हुआ और बहुत सारा धन ब्रिटिश सरकार को मिला। झांसी विजय के बाद सर ह्यू रोज ने 25वीं पलटन के अधिकारी मेजर रॉबर्टसन के अधिकार में किला देकर शहर का अच्छा प्रबंध किया। उन्होंने अपनी सेना के घायल हुए लोगों की सेवा और इलाज के लिए एक अस्पताल खोल दिया। युद्ध में मरे हुए लेफ्टिनेंट डिक, लेफ्टिनेंट मिकली जॉन, लेफ्टिनेंट सिंक्लेयर, लेफ्टिनेंट सियनसन आदि योद्धाओं के मृत शरीर का ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह सन 57 के जून महीने में जो अंग्रेज अफसर विद्रोहियों के हाथ से मारे गए थे उनका भी संस्कार करवाकर उनकी आत्मा को शांति दी गई। इस युद्ध में सर ह्यू रोज ने अपनी वीरता और कुशलता का बहुत अच्छा परिचय दिया। इसके संबंध में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और सर कॉलिन केवल आदि बड़े बड़े लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा और स्तुति की है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झांसी में जो घनघोर संग्राम और महाप्रलय हुआ उसमें दोनों ओर से कितने आदमी मारे गए। अंग्रेज ग्रंथकारों के प्रमाणों से पता चलता है कि अंग्रेजों के 36 सेनापति और 307 सिपाही मरे और जख्मी हुए और झांसी के 5000 आदमी मारे गए। परंतु इस बात का निर्णय नहीं किया गया कि झांसी के 5000 आदमी युद्ध में मारे गए या बिजन में। डॉक्टर साहब के कथन से ये समझ में आता है कि झांसी के बिजन में ही बहुत सारे लोग मारे गए। वे लिखते हैं, In Jhansi, we burnt and burial upward of the 1000 bodies, and if we take into account of the constant fighting carried since investment and the battle of the Betwa, I fancy I am not far wrong when I say I believe we much have stained 3000 of the enemy। हालांकि अन्य ग्रंथकारों ने झांसी की लूट और महाप्रलय का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं किया है, फिर भी विषयों का वर्णन करते समय इन बातों का जो थोड़ा सा उल्लेख किया गया है, उससे लगता है कि झांसी में लगातार 3 दिन के लिए जो बिजन बोला गया उसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। युद्ध में उतने आदमी नहीं मारे गए, अंग्रेज लेखक मिस्टर मार्टिन ने अपनी किताब में लिखा है। ऑन द 4th अप्रैल द फोर्ट एंड द रिमेंडर्स ऑफ द सिटी वर टेकन पोजिशन ऑफ बाय द ट्रूप्स हु कमिटेड फियरफुल स्लॉटर। नो लेस देन 5,000 पर्सन आर स्टेटेड टू हैव पेरिशेड एट झांसी और जो हैव बीन आउट डाउन बाय द फ्लाइंग कैंप। द प्लंडर ऑब्टेन्ड इज सेड टू हैव बीन वेरी ग्रेट। अंग्रेज ग्रंथकारों के भिन्न भिन्न लेखों से ये बात निर्विवाद सिद्ध नहीं होती कि महारानी लक्ष्मीबाई के 5,000 आदमी झांसी की लड़ाई में ही मारे गए, किंतु ये पता चलता है कि इनमें से अधिकांश लोग झांसी की लूट और बिजन में ही मारे गए। दूसरे दिन 5 अप्रैल को महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले से निकलकर भांडेर नामक एक गांव पहुंची। वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को कुछ खिलाया पिलाया। इसके बाद वे कालपी की ओर जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में ही लेफ्टिनेंट बोकर महारानी को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ गाँव के समीप आ पहुंचे। उस समय महारानी के पास ना तो सेना थी और ना ही अपनी रक्षा के लिए एक तलवार के अलावा अन्य कोई साधन था, इसलिए अपने पुत्र को पीठ पर बांध हाथ में तलवार ले घोड़े पर सवार हो वे शत्रु से लड़ने को तैयार हो गए। अंग्रेजी सवारों ने उन पर बहुत जोर से धावा किया। वास्तव में यही समय महारानी के युद्ध कौशल की परीक्षा का था। एक ओर बोकर साहब के समान अनुभवी अंग्रेज वीर अपने चुने हुए सवारों को साथ लेकर वायु की गति से दौड़ते चले आ रहा था और दूसरी ओर उनका सामना करके वहां से सुरक्षित भाग जाने की कोशिश एक ब्राह्मण स्त्री कर रही थी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था। हालांकि ऐसे कठिन समय में जीत की आशा करना महारानी के लिए असंभव जैसा था, फिर भी उन्होंने अपने अलौकिक साहस, दृढ़ निश्चय, अद्भुत शूरता और अद्वितीय रणकौशल से एक रणशूर अंग्रेज योद्धा के भी दांत खट्टे कर दिए। जैसे ही लेफ्टिनेंट बोकर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही लक्ष्मीबाई ने कुछ दूर हटकर अपनी तलवार का एक हाथ इतनी चपलता से चलाया कि लेफ्टिनेंट बोकर घायल होकर छटपटाते हुए नीचे गिर पड़े। बस फिर क्या था, रानी ने उसी समय अपने घोड़े को वायु की गति से आगे दौड़ाया और सीधा कालपी का रास्ता पकड़ा। इस समय लक्ष्मीबाई की युद्ध निपुणता की परीक्षा क्षण भर में ही हो गई। संग्राम में योद्धाओं और कवि मंडल में कवियों का तेज या उसका प्रभाव एक क्षण भर में ही मालूम हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने कवि की इस उक्ति को खुद पर बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ कर दिया। एक ही क्षण में उनका अपूर्व तेज प्रकट हो गया। जख्मी लेफ्टिनेंट बोकर साहब और उनके साथी सवार हताश होकर झांसी लौट आए। इस लड़ाई का वर्णन अंग्रेज लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक नहीं किया। मार्टिन साहब ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक में सिर्फ इतना ही लिखा, शी वॉज पर्स्यूड एंड नियरली ओवरटेक लेफ्टिनेंट बोकर with a party of cavalry followed her to Bundere, 21 miles from Jhansi, and there saw a tent in which was spread an unfinished breakfast. Pressing on, he came in sight of the Rani, who was escaping on a grey horse with 4 attendants. But at this point he was severely wounded and compelled to relinquish the pursuit. महारानी लक्ष्मीबाई दिन भर घोड़ा दौड़ाती हुई रात के 12 बजे कालपी पहुंचे। धन्य है जो स्त्री राजसी सुख, विलास और वैभव में रहती थी, उसी ने आज बिना कुछ खाए पिए अपनी पीठ पर पुत्र को बांधकर 24 घंटे में 102 मील की यात्रा की और रास्ते में अनेक परेशानियों के आ जाने पर भी अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन किया। इससे महारानी के साहस, मनोनिग्रह और घोड़े पर बैठने की शक्ति का सच्चा परिचय मिलता है। कालपी एक छोटा सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना के पश्चिमी किनारे पर एक मजबूत किला बना हुआ है। वो तीन और मजबूत कोट से घिरा हुआ है और एक ओर खुद यमुना का गहरा और गंभीर प्रवाह उसे बांधे हुए है। किले के पश्चिम ओर एक मैदान है, उसके बाद शहर की आबादी है। ये शहर बहुत प्राचीन है, यहाँ बड़े बड़े धनिक व्यापारी रहते थे। शाही जमाने में यहाँ कई बार भयंकर युद्ध हुए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लड़ाई में जो शाही सरदार मारे गए थे वे सब वहाँ गड़े हैं। इस कब्रिस्तान में बादशाह के बड़े बड़े 84 सरदारों की अच्छी अच्छी कब्रें बनी हुई हैं। इन कब्रों के गुंबजों से वो मैदान शोभा यमान दिखाई पड़ता है, इसलिए उस स्थान को 84 गुंबज का मैदान कहते हैं। ये इतिहास प्रसिद्ध शहर पहले गोविंद पंत बुंदेल के अधिकार में था, इसके बाद वो उनके वंशज जालौन के जागीरदार नाना गोविंद राव के अधीन रहा। सन 1806 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जालौन के साथ संधि करके कालपी को अपने अधिकार में कर लिया। तब से वो अंग्रेजी सरकार के ही अधिकार में था। एक बार सन 1825 ईस्वी में नाना पंडित ने विद्रोह करके उसे अपने अधिकार में कर लिया था, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार ने झांसी के सूबेदार रामचंद्र राव की सहायता से उस पर फिर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद सन 1857 ईस्वी के जून महीने की 12 तारीख को जब झांसी और कानपुर के विद्रोही कालपी आए, तब वहां की सेना ने विद्रोह किया और मुंशी शिव प्रसाद डिप्टी कलेक्टर को वहां से मार भगाया। तभी से कालपी में अंग्रेजों की राज सत्ता नष्ट हो गई थी और केवल विद्रोहियों का ही वहां अमल था। नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब भी ये सोचकर कि कालपी बुंदेलखंड के मध्य में है और वहां का किला बहुत मजबूत है, अपनी सेना लेकर यहीं आ गए। इससे कालपी विद्रोहियों का एक मुख्य अड्डा बन गया था। युद्ध के लिए इन विद्रोहियों ने गोला बारूद आदि बहुत सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई इसी कारण राव साहब पेशवा के पास कालपी आई थी कि वहां पहुंचकर अपनी रक्षा का कोई उपाय सोचा जा सकेगा। कालपी पहुंचते ही राव साहब पेशवा की ओर से महारानी के रहने आदि का सारा प्रबंध अच्छी तरह से हो गया। दूसरे दिन महारानी ने पेशवा से भेंट कर अपनी तलवार उनके सामने रख दी और आंखों में आंसू भर कर कहा, आपके पूर्वजों ने ये तलवार हमें दी थी, उनके पुण्य प्रताप से आज तक हमारे पूर्वजों ने और मैंने इसका उचित उपयोग किया है, परंतु अब आपकी सहायता और कृपा नहीं है, इसलिए अपनी ये तलवार आप वापस ले लीजिए। महारानी की युक्ति संगत चतुराई देखकर पेशवा ने इस पर खेद प्रकट किया कि झांसी की लड़ाई में उनकी सेना कुछ सहायता नहीं कर सकी। इसका ठीक ठीक कारण समझ में नहीं आता कि जिस समय झांसी में युद्ध हो रहा था उस समय पेशवा की सेना से महारानी लक्ष्मीबाई को सहायता क्यों नहीं पहुंची। जब अंग्रेजी सेना पेशवा की सेना से लड़ने लगी तब झांसी के किले से अंग्रेजी सेना पर तोप के गोले क्यों नहीं चलाए गए? यदि गोले चलाए जाते तो अंग्रेजी सेना को पेशवा की सेना पर हमला करने का मौका नहीं मिलता और पेशवा की सेना की हार नहीं होती। ऐसा लगता है कि उस समय के किले के बुर्ज पर लालताबादी नाम का जो सरदार था उसने ये कहा था कि अंग्रेजी सेना पेशवा की ही सेना है और इसलिए उसने अंग्रेजी सेना पर किले से तोपे नहीं चलने दी। ये हाल गिलियम नाम के ग्रंथकार ने रानी नामक ग्रंथ में महारानी और तात्या टोपे की बातचीत में दिया है। जिस समय तात्या टोपे ने महारानी से पूछा कि जब हम तुम्हारी सहायता के लिए सेना लेकर आए और अंग्रेजी सेना से हमारी लड़ाई आरंभ हुई, तब यदि उन पर किले से गोले बरसते तो उनकी एक भी चलती और ना हमारी हार होती, उस समय महारानी ने उत्तर दिया कि किले में लालताबादी नाम का एक ब्राह्मण मुख्य हवलदार था, उसने हमें वैसा करने नहीं दिया। उसने अंत तक हमसे यही कहा कि वे लोग सचमुच हमला नहीं कर रहे हैं, किंतु वो इसलिए तोपे दाग रहे हैं कि हम लोग बाहर निकल आए। इससे पता चलता है कि उस समय किले में या तो कुछ दगाबाजी की गई थी या मूर्खतावश ये बहुत बड़ी गलती की जा रही थी। जिस समय तात्या टोपे की सेना पर अंग्रेजी सेना ने धावा किया, ठीक उसी समय किले से अंग्रेजी सेना के ऊपर तोपे चलना बंद हो गई थी। इस कारण अंग्रेजी सेना के तात्या को हराने का अच्छा मौका हाथ लगा। यही बात एक और अंग्रेजी लेखक की गवाही से सिद्ध होती है। सर ह्यू रोज के साथ डॉक्टर सिल्वेस्टर नामक असिस्टेंट सर्जन थे। वे द कैंपेन इन सेंट्रल इंडिया में लिखते हैं, हम इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि जिस समय पेशवा की सेना किले में घिरे हुए लोगों की बाहर से रक्षा कर रही थी, उस समय किले के लोगों ने हम पर एकदम हमला क्यों नहीं किया। उन लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी जीत जरूर होती। फिर हमारी पैदल पलटन और तोपे चलाने वाले चाहे कैसा ही अच्छा काम क्यों ना करते हों। कोंच से 10 मील की दूरी पर लोहारी नाम के गांव में मराठों का बनवाया हुआ एक मजबूत किला था। रोज साहब ने सोचा कि यदि यह किला हम लोगों के हाथ आ जाए तो यहां से कोंच पर चढ़ाई करने में कुछ कठिनाई नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मेजर गाल को उस किले पर धावा करने की आज्ञा दी। मेजर गाल ने तीसरी यूरोपियन पलटन के कुछ सिपाही साथ लेकर लोहारी पर हमला कर दिया। इस किले की रक्षा के लिए कुछ अफगानी लोग नियुक्त थे। उनमें और अंग्रेजी सेना में खूब घनघोर युद्ध हुआ। अंत में अंग्रेजों के भाग्य की प्रबलता से विद्रोहियों की हार हुई और किला उनके हाथ आ गया। इस लड़ाई में 2 अंग्रेजी अफसर और बहुत सारे गोरे सिपाही मारे गए। लोहारी का किला हाथ में लेते ही रोज साहब ने कोंच पर धावा करने की सलाह दी। रोज साहब ये बात जानते थे कि विद्रोही लोग अपनी सेना के आगे के भाग का अच्छा बंदोबस्त करते थे, इसलिए उन्होंने सामने से धावा ना करके विद्रोहियों की सेना के पिछले भाग पर धावा करने का निश्चय किया। इसके अनुसार दूसरे दिन अंग्रेजी सेना 14 मील दूरी पर हटाकर अपने अनुकूल स्थान पर रखी गई। वहां से उन्होंने पहली ब्रिगेड को अपनी बाईं ओर रखा और उसके पीछे के लोगों को नागपुरा गांव के पास रखा। दूसरी ब्रिगेड को मध्य भाग में चुमेर गांव के पास रखा और दाहिनी ओर मेजर आरर की अधीनता में हैदराबाद की पलटन को रखा। इस तरह मौके की जगह ढूंढकर अंग्रेजी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। इधर बांदा के नवाब तात्या टोपे ग्वालियर से सेना आने की राह देख रहे थे। इनकी थोड़ी सी सेना कोंच गांव के मैदान में पेड़ों के नीचे पड़ी थी। उसको जब अंग्रेजी सेना के आने का समाचार मिला, तब उसने तुरंत उन पर तोपे चलाना आरंभ कर दिया। रोज साहब ने अपनी सेना के कई भाग करके उसको भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा था, इसलिए विद्रोहियों की तोपे अंग्रेजी सेना के सामने के ही भाग पर चल रही थी। अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से अपनी तोपे और बंदूकें चलाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण विद्रोहियों के घुड़सवारों की बहुत दुर्दशा हुई। वे रणभूमि से भागने लगे। विद्रोहियों ने सिर्फ सामने के भाग का प्रबंध किया था और अंग्रेजी सेना ने उन पर चारों ओर से गोली बरसाना आरंभ कर दिया, इसलिए उनके पास मैदान से भाग जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अंग्रेजी सेना को गर्मी के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इन दिनों गर्मी 42 डिग्री थी, परंतु ऐसी सख्त गर्मी में भी रोज साहब ने युद्ध का अच्छा प्रबंध करके विद्रोहियों को मार भगाया। इस लड़ाई के संबंध में रोज साहब खुद अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार लिखते हैं, तेज गर्मी से हमारी सेना का जो नाश हुआ, यदि वह ना होता तो हम पूरी तरह से शत्रुओं का नाश कर डालते। हमारी सेना के 11 सिपाही तेज धूप के कारण मृत्यु के मुंह में चले गए। बहुत सारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी दशा का वर्णन हमसे नहीं हो सकता। 4 बार गर्मी के कारण खुद मुझे अपना घोड़ा एक और छाया में ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने मेरे सिर पर जब ठंडे पानी की धार डाली और गर्मी शांत करने वाली औषधियां दी, तब मुझे होश आया। डॉक्टर अर्नाड साहब के लेख से भी यही पता चलता है कि इस लड़ाई में गर्मी के कारण अंग्रेजी सेना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हालांकि गर्मी के कारण अंग्रेजी सेना की हालत बहुत बुरी थी, फिर भी उसने 1 घंटे तक बहुत भयंकर युद्ध किया। ठीक दोपहर के समय 86वीं और 25वीं पलटन ने कोंच गांव पर धावा कर दिया। पेशवा की सेना ने अपना पराक्रम खूब दिखाया। हैदराबाद इन्फेंट्री के अफसर ने विद्रोहियों को पीछे हटाकर उनकी जगह छीन ली, परंतु पेशवा की सेना के सामने उनको फिर से पीछा हटना पड़ा। उस समय अंग्रेजी घुड़सवारों ने बहुत बहादुरी का काम किया। तात्या टोपे और बांदा के नवाब ने अंग्रेजी सेना को हराने की बहुत कोशिश की, परंतु सब निष्फल हुआ। आखिर अंग्रेजों की ही जीत हुई। तात्या टोपे और बांदा के नवाब बची हुई सेना को साथ लेकर कालपी चले गए। विद्रोहियों की 8 तोपें, बहुत सारा गोला बारूद आदि अंग्रेजों के हाथ लगा। इस युद्ध में हालांकि विद्रोहियों की संख्या 20,000 थी, लेकिन उन लोगों का प्रबंध अच्छा नहीं था। यही कारण है कि उनको मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हरा दिया। रोज साहब ने अपनी सेना की इस तरह प्रशंसा की, इन सज्जन सिपाहियों ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हालांकि धूप और थकावट के कारण उनकी संख्या कम होने लगी थी, फिर भी उन्होंने शिकायत करके अपने अफसरों की चिंता कभी नहीं बढ़ाई। वे चाहे कितने ही थके हो और उन्हें चाहे कितनी कम नींद आई हो, परंतु बिगुल बजते ही तुरंत वे हथियार बांधकर खुशी से खड़े हो जाते थे। अपने दुश्मन से हारना या उसको पीठ दिखाना वे अपना अपमान समझते थे। सब लोगों का यही निश्चय था कि हमारी शारीरिक ताकत भले ही कम हो जाए, परंतु हमारा जोश, मानसिक शक्ति और आज्ञा पालन करने की बुद्धि कभी कम नहीं होगी। अक्सर वे इतने बीमार हो जाते थे कि चल भी नहीं सकते थे, परंतु इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे सिपाही कर्तव्य परायण, शांत और आज्ञाकारी थे। ऐसे शूरवीर, आज्ञाकारी और कर्तव्य परायण सेना के सामने विद्रोही लोग रणभूमि में कैसे ठहर सकते थे? महारानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में मुख्य रूप से शामिल नहीं थी। बांदा के नवाब और राव साहब पेशवा ने सारा प्रबंध अपने ही अधीन रखा था, परंतु उन लोगों ने ना तो खुद कोई अच्छा प्रबंध किया और ना लक्ष्मीबाई को किसी प्रबंध का अधिकार ही दिया। इसी कारण उनकी सेना का बंदोबस्त ढीला पड़ गया और अंग्रेजों ने मार्गों की जगह पर अपना अधिकार जमा लिया। कोंच को जीतकर सर ह्यू रोज ने कालपी पर धावा करने का निश्चय किया। रोज साहब ने इस बात पर खूब विचार कर लिया था कि कालपी पर किस ओर से धावा किया जाए। उनको सबसे आसान रास्ता हरदोई और उरई होकर दिखाई पड़ा। उन्होंने उसी रास्ते से कालपी पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रास्ते में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को बहुत तंग किया, परंतु रणपंडित रोज साहब धैर्य और कुशलता पूर्वक आगे बढ़ते ही चले गए। गर्मी के कारण अंग्रेजी सेना परेशान हो गई, इसलिए रोज साहब ने कमांडर इन चीफ को लिखा कि आप कर्नल मैक्सवेल को सेना सहित कालपी भेज दीजिए। ये समाचार पाते ही कमांडर इन चीफ ने 88वीं पलटन के 2 भाग, सिख लोगों के 1 पलटन और ऊंटों का 1 रिसाला रोज साहब की सहायता के लिए भेज दिया। इस तरह रोज साहब ने अपनी सेना का अच्छा प्रबंध करके कालपी को घेर कर ऐसा स्थान हाथ में लेने का विचार किया जहां शत्रुओं का प्रबंध ढीला हो। जब विद्रोही लोग कोंच से भागकर कालपी चले आए, तब वहां महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा से कहा, कोंच की लड़ाई में आपका प्रबंध बहुत ही खराब था। इस समय आपको होशियारी के साथ प्रबंध करना चाहिए। अव्यवस्थित सेना कभी युद्ध में जीत नहीं सकती। अच्छी व्यवस्था के कारण ही अंग्रेजी सेना को विजय प्राप्त होती है। अंग्रेजी सेना के सेनापति भिन्न भिन्न और अपने अपने काम में बहुत कुशल हैं। उनके सिपाही युद्ध कला में प्रवीण और आज्ञाकारी हैं। उन सब लोगों पर एक ही मुख्य अधिकारी है जिसकी आज्ञा के अनुसार सब लोग प्रबंध करते हैं। इन अंग्रेजों से युद्ध करने में आपको कभी यश प्राप्त नहीं होगा। आपको सबसे पहले मार्गों की जगह ढूंढकर अपने मोर्चे बांधना चाहिए और कार्य कुशल लोगों को वहां नियुक्त करना चाहिए। राव साहब पेशवा ने महारानी की सूचना को ध्यान में रखकर अपनी सेना का प्रबंध किया। एक ओर उन्होंने बांदा के नवाब की सेना को नियत किया और दूसरी ओर रुहेलखंड से आए हुए रुहेलों और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की काली पलटन को नियुक्त किया। बड़ी बड़ी तोपें मोर्चों पर चढ़ाई गई। सेना का रास्ता रोकने के लिए बुंदेलों की सेना नियत की गई। इस प्रकार सेना का प्रबंध करके राव साहब पेशवा ने प्रधान सेनापति का काम अपने हाथ में ले लिया। हालांकि राव साहब ये जानते थे कि लक्ष्मीबाई युद्ध विद्या में बहुत प्रवीणा है। सच पूछिए तो उस समय सारे रण पंडितों में महारानी से अधिक निपुण कोई नहीं था। फिर भी अपनी विशेष महत्वाकांक्षा के कारण अपनी सेना का मुख्य अधिकार एक स्त्री के अधीन कर देना वे अच्छा नहीं समझते थे। केवल बाहर से संतुष्ट रखने और आदर करने के लिए उन्होंने लाल वर्दी के 250 घुड़सवार स्वतंत्र तरीके से महारानी के अधीन कर दिए और कहा कि आप यमुना की ओर रहिए। राव साहब के बहुत कहने सुनने पर महारानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर की ओर रक्षा करने का काम स्वीकार कर लिया और एक अच्छे युद्ध कला विशारद सेनानायक के समान अपनी सेना का प्रबंध किया। 15 तारीख को अंग्रेजी सेना कालपी से 6 मील की दूरी पर गलावली गांव के पास आ पहुंची। कालपी के छबीना ने जैसे ही देखा कि अंग्रेजी सेना अब सीधे रास्ते से रणभूमि में पहुंचेगी, वैसे ही उसने उतावली में उस पर छापा मारा और अंग्रेजी सेना की रसद बंद कर देने की कोशिश की। छबीना के पास ग्वालियर की बहुत सारी सेना थी। इस सेना ने अंग्रेजी सेना की 25वीं इन्फेंट्री पर धावा करके बहुत सारे लोगों को मार डाला और बहुत सारों को घायल किया, परंतु केवल इतनी हानि होने से अंग्रेजी सेना का सामर्थ्य कम नहीं हुआ, क्योंकि ग्वालियर की सेना के डेरे जगह जगह पर टिड्डी दल की तरह पड़े थे। परंतु ग्वालियर की सेना इतने में ही फूल गई। उसने सोचा अब डर की कोई बात नहीं है, जीत निश्चित है। इस जरा सी खुशी से अपने ही रंग में मस्त होकर वे अंग्रेजी सेना से बोले, तुम ही ने झांसी को लूटा है और अब कालपी की ओर आ रहे हो। ठीक है, आओ, तुम्हारी खबर लेने के लिए हम तैयार हैं। 16 तारीख को दूसरी ब्रिगेड की सेना से विद्रोहियों का सामना हुआ। कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। सर ह्यू रोज साहब अपनी सेना दयापुर नामक गांव के पास ले आए। उन्हें सेना रखने के लिए ये जगह बहुत अच्छी लगी। अंत में उन्होंने वहीं डेरा डालकर विद्रोहियों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में बहुत सारे विद्रोही मारे गए और अंत में उनको पीछे हटना पड़ा। दूसरी ब्रिगेड वालों ने भी घोर युद्ध किया और 71वीं हाईलैंडर्स पल्टन ने भी विद्रोहियों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना ने जिस जगह पर अपना डेरा डाला था वहां से कालपी बहुत दूरी पर थी। बीच में यमुना नदी तक बहुत बीहड़ रास्ता था। इस रास्ते में लगातार यमुना नदी तक बड़ी बड़ी दरारें और भयानक खड्डे थे। इसी कारण वहां तोपखाना नहीं जा सकता था। विद्रोहियों को अपनी रक्षा के लिए ये अच्छा मौका हाथ लगा था। सर ह्यूरोज ने कालपी का रास्ता बहुत भयानक देखकर अचानक कालपी पर चढ़ाई करने का विचार छोड़ दिया। गलावली गांव की उन्हें अपने आश्रय के लायक जगह दिखाई दी और इसीलिए वहीं आकर उन्होंने अपनी छावनी डाल दी। कोंच में विद्रोहियों की जो हार हुई थी उससे वे बेहद शर्मिंदा थे और क्रोधित भी हो गए थे। कालपी की सेना में इस समय अधिक स्फूर्ति आ गई थी और यमुना की शपथ खाकर उन लोगों ने संकल्प किया था कि अब या तो अंग्रेजी सेना को पराजित करेंगे या हम खुद ही लड़ाई में जान दे देंगे। और उधर सरकारी अफसर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, लेफ्टिनेंट के रॉबर्टसन और लेफ्टिनेंट गार्डन आदि रणवीर पंडित अपनी सेना के साथ विद्रोहियों को मार भगाकर कालपी को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विद्रोहियों ने बहुत आवेश से आगे बढ़कर शत्रु की सेना पर छापा मारा, जिससे उनकी सेना की रक्षा की जगह छूट गई। अंग्रेजी सेना को ये अच्छा मौका मिल गया। वो अपने मौके पर आकर डट गई और तोपों की मार शुरू हो गई। कालपी की सेना ने अपनी जगह छोड़ दी थी, इस कारण उनकी गोलियां अंग्रेजी सेना पर कुछ असर नहीं कर सकती थी और अंग्रेजी सेना की तोपें धड़ाधड़ गोले बरसाकर विद्रोहियों को नष्ट कर रही थी। कालपी की सेना ने अपनी रक्षा के लिए बहुत कोशिश की और बहुत जोर शोर से अंग्रेजी सेना पर धावा किया, पर अपनी गलती के कारण उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली, उल्टे इन्हीं लोगों की अधिक हानि हुई। इस बीच में कालपी की सेना का अधिक जोर देखकर हैदराबाद की पलटन भी अंग्रेजी सेना से आ मिली। इस प्रकार कालपी की सेना के अगले भाग की पराजय सुनकर सारी सेना बहुत भयभीत हो गई। सब लोगों में निराशा छा गई। राव साहब, पेशवा, बांदा के नवाब आदि मुख्य मुख्य योद्धा डर कर भागने का विचार करने लगे। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब जरा आप मेरा भी कौशल देखिए। इतना कहकर उन्होंने अपना घोड़ा बुलवाया और उस पर सवार होकर अपने लाल वर्दी के सवारों को साथ लिए वे आगे बढ़ी। अंग्रेजों की दाहिनी ओर जाकर उन्होंने बहुत तेजी से उन पर धावा किया। उनके इस अचानक प्रचंड आक्रमण से अंग्रेजों की सेना एकदम पीछे हट गई। बड़े बड़े अंग्रेज शूरवीर कट कट कर धराशायी होने लगे। इस बार महारानी ने इतनी बुद्धिमानी और सुव्यवस्थित तरीके से युद्ध किया कि उनके शौर्य के कारण लाइट फील्ड तोपों के गोले कुछ देर के लिए बिल्कुल बंद हो गए और उनके गोलंदाज स्तब्ध होकर जैसे के तैसे खड़े रह गए। इतना ही नहीं, महारानी उन तोपों से 20 फीट की दूरी तक मारती काटती चली गई। महारानी की इस विशाल वीरता को देखकर कालपी की दूसरी सेनाओं का साहस भी बढ़ गया और उन्होंने बहुत तेजी से अंग्रेजी सेना पर चढ़ाई कर दी। दोनों तरफ से घमासान युद्ध मच गया। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने चपल घोड़े को बढ़ाती हुई और अपनी शमशेर को हाथ में बहुत चालाकी से चलाती हुई अंग्रेजी तोपखानों पर चढ़ी, उस समय उनकी वीरता, आवेश, मर्दुमी और बहादुरी देखकर पेशवा के दूसरे सेना नायक भी फड़क उठे और वे भी अंग्रेजी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे जौ के खेत पर टिड्डी दल टूट पड़ता है। उस समय जो घनघोर युद्ध हुआ उससे लगता था कि अब विद्रोहियों की जीत होने में देर नहीं है। महारानी दांतों से घोड़े की लगाम पकड़े दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। उनका तेज और शौर्य जैसे इस समय फूट कर निकल रहा था। वे प्रत्यक्ष चंडिका का अवतार लग रही थी। पेशवा की सेना भी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। इस लड़ाई में अंग्रेज वीरों के छक्के छूट गए। तोपखानों के बचे गोलंदाज हतप्रभ होकर भागने लगे। घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसल गया। तोपखानों की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ने लगी। इतने में ब्रिगेडियर स्टुअर्ट अपना घोड़ा बढ़ाते हुए तोपखाने के पास आए और गोलंदाजों को उन्होंने खूब उत्साहित किया। वे लोग फिर से तोपें दागने लगे। जब सर ह्यू रोज को यह समाचार पता चला कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा की सेना को साथ लेकर बहुत तेजी से धावा किया है और अंग्रेजी तोपें बंद कर दी है, तब वे अपने साथ ऊंट सवारों की सेना लेकर युद्ध स्थल की ओर दौड़े और खुद सेना नायक बनकर उन्होंने कालपी की सेना पर बहुत तेजी से हमला किया। विद्रोहियों की सेना बहुत देर तक मस्त होकर अंग्रेजी सेना से लड़ती रही, परंतु जब उस पर 86वीं और 25वीं पलटन के सिपाही टूट पड़े तब उनके होश और हवास जाते रहे। सर ह्यू रोज के ऊंट रिसाले ने बहुत जोर से विद्रोहियों पर गोलों की वर्षा शुरू कर दी। कालपी की सेना का साहस खत्म हो जाने के कारण उन्हें और आगे बढ़ने में सहायता नहीं मिली और निराश होकर पीछे लौटना पड़ा। इस प्रकार पेशवा की सेना के हताश हो जाने पर महारानी भी राव साहब पेशवा की छावनी में लौट आई। इस प्रकार कालपी की सेना के फूट पड़ते ही सर ह्यू रोज ने विद्रोहियों का पीछा कर चारों ओर से उनको मारना शुरू किया। अंग्रेजी सेना जीत से उत्साहित होकर विद्रोहियों का जोर शोर से कत्ल करने लगी। उसे जहां जो मिला वहीं वह मारा गया। हजारों लोग भयभीत होकर बचने के लिए यमुना नदी के बीहड़ में जा छुपे। इस प्रकार सर रोज ने अपने अच्छे प्रबंध और सुशिक्षित सेना की ताकत से असंख्य विद्रोहियों को नीचा दिखाया और पेशवा की सेना अशिक्षित होने के कारण हार गई। रणभूमि से विद्रोहियों को भगाकर रोज साहब ने कालपी पर अपना अधिकार करने और ब्रिटिश झंडा गाड़ने का निश्चय किया। उन्होंने पहले ब्रिगेड की सेना ब्रिगेडियर सी.एस. स्टुअर्ट के साथ यमुना नदी के किनारे से कालपी की ओर भेजी और दूसरे ब्रिगेड को खुद अपने साथ लेकर वे सीधे कालपी की ओर रवाना हुए। राव साहब पेशवा ने कालपी के किले में गोला बारूद आदि बहुत सारा लड़ाई का सामान इकट्ठा कर रखा था। किले में उसकी रक्षा के लिए बहुत सारी सेना भी थी। इसके अलावा जो सेना लड़ाई के मैदान से भागकर आई थी वे भी चारों ओर से घिरी हुई थी। अंग्रेजी तोपखाने के अफसर कर्नल मैसवेल ने अपनी बड़ी बड़ी तोपें लगवाकर उन्हें पेशवा की सेना पर दागना शुरू कर दिया। इससे जो सेना कालपी की रक्षा के लिए जमी हुई थी वो पीछे हटने लगी। इतने में ही अंग्रेजी सेना बहुत तेजी से शहर में आ घुसी। पेशवा के गोलंदाजों ने और दूसरी जगहों के मोर्चों वाले शत्रुओं ने भी सेना पर मार शुरू कर दी, परंतु इस समय विरोधी पक्ष की तोपें भयानक गोले बरसा रही थी, इसलिए कालपी वालों की तोपों का कुछ असर नहीं हुआ। कालपी की सेना इन तोपों की मार से घबरा गई। अंग्रेजी सेना ने बहुत तेजी से धावा करके उनके चार हाथी जीत लिए और कालपी के आगे मैदान में अपना डेरा डाल दिया। इतने में सर ह्यू रोज भी अपनी सेना के साथ वहां दाखिल हुए। इसके बाद सारी अंग्रेजी सेना ने मिलकर शहर में प्रवेश किया। कालपी की सेना भागने लगी। कर्नल गाल और हैदराबाद कंटिंजेंट सेना के अफसर कप्तान एबट ने कई मील तक उसका पीछा किया और उनके बहुत से हाथी घोड़े ऊंट और तोपे छीन लिए। बहुत सारी युद्ध सामग्री अंग्रेजों को मिल गई। इन सब में बहुत सारे लोग मारे गए। 24 तारीख को सरकारी सेना ने कालपी को पूरी तरह से जीत लिया। इसी तारीख को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इस कारण कालपी के मैदान में खूब तोपों की सलामी हुई और विजय उत्सव के उत्साह में दोगुनी खुशी मनाई गई। अंग्रेजी सेना को कालपी की ओर अधिकाधिक घुसते हुए देखकर राव साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नवाब आदि प्रमुख लोग वहां से बड़ी युक्ति से निकल गए। अंग्रेजी सेना को कालपी का किला और शहर पर कब्जा करने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। शहर में जो पेशवा की पलटन थी वो लड़ाई कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इन दिनों सारे विद्रोही लोग निराश हो गए थे। दिल्ली, लखनऊ, झांसी आदि बड़े बड़े स्थान अंग्रेजों ने जीत लिए थे। बड़े बड़े अनुभवी और पुराने वीर सैनिकों ने निराश होकर अपना अपना काम छोड़ दिया था। जगह जगह जो नोटिस निकाले गए थे उनको देख कर वे लोग अपनी अपनी जान बचा कर भागे भागे घूम रहे थे। कई लोग तो वेश बदल कर दूसरा धंधा करने लगे और जो नए सिपाही भर्ती किए गए उन्हें युद्ध करने का तरीका नहीं मालूम था। नौसिखिए होने के कारण युद्ध में टिक नहीं सकते थे। सच बात तो ये है कि कालपी की सेना में अच्छे और सच्चे वीर थे ही नहीं, चोर लुटेरे ही उसमें अधिक रह गए थे। उनका लड़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बल्कि लूट मार करने पर ही अधिक ध्यान था। कालपी में 3 दिन तक लड़ाई होने के बाद जैसे ही उन लोगों को पता चला कि अंग्रेजों की जीत हुई और पेशवा हार गए, वैसे ही सैकड़ों सिपाही युद्ध छोड़कर शहर में लूट मार करने लगे। कालपी में पहले शक्कर का बड़ा व्यापार होता था। वहां शक्कर के कई कारखाने थे जिनमें शक्कर बनाई जाती थी। विदेशियों ने सारे कारखाने नष्ट कर डाले। अंग्रेजी सेना शक्कर आदि पाकर खूब खुश हुई। शक्कर के बोरों और सब प्रकार की जींसों को बहुत बर्बरता से लूटा। इतने में तीसरे दिन अंग्रेज लोग शहर में घुसे और देखते देखते उन लुटेरों को मार डाला। अंग्रेजों को सारी लूटी हुई सामग्री अचानक मिल गई। अंग्रेजों को यहाँ जो फायदा हुआ उससे कई गुना अधिक फायदा यह हुआ कि उन्हें किले में बहुत सारा माल असबाब मिला। राव साहब पेशवा और उनके प्रधान तात्या टोपे ने 1 साल तक बहुत मेहनत से जो युद्ध सामग्री जमा की थी वे सब सरकारी सेना को बिना मेहनत के मिल गई। उसमें सिर्फ बंदूक में भरने की बारूद 6,000 पाउंड थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी चीजें जैसे तोप, बंदूक, तलवार आदि कितनी होंगी। खुद एक अंग्रेज ग्रंथकार ने लिखा है कि इस सामान की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक होगी। डॉक्टर सिल्वेस्टर ने द कंपनी इन सेंट्रल इंडिया में लिखा है, देयर वॉज एन इनडिस्क्राइबल मेडले हियर जस्ट एज इन द फोर्ट ऑफ झांसी, बट द आर्टिकल्स आर ऑल परटेंड to the art of war. There were guns, large and small, numbering 15, besides a large mortar and howitzer. There were conical stocks of English round shot and shell, and several sheds in which the manufacture of cannon. howitzer shells and the repair of arms was being carried on. The tools and appliances were all of English make. Several muskets had been restocked and very well fitted. The Westrator failed in that branch of ordnance manufacture. They had all been cast on clay molds, and the outside number of broken branch shells, which proved that they had rather filed smooth. In fact, this was the greatest central arsenal of the mutineers, and had it been capable of defense, it would not have fallen such an easy prey to us. Sir Hugh Rose ने अनेक परेशानी सहकर जिस काल्पी को जीता था, उसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने 24 मई सन 1858 को तार द्वारा उनका अभिनंदन किया और लिखा कि आज तक आपका युद्ध में जो लगातार यश छाया हुआ है, उसमें काल्पी की विजय सबसे श्रेष्ठ है। इस विजय के लिए मैं आपका और आपके वीर सैनिकों का बड़ा आभार मानता हूँ। इस प्रकार सर रोज ने पूरा मध्य भारत विद्रोहियों से ले लिया और काल्पी में अपनी विजय ध्वजा फहराई। इसके बाद कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैबिल ने अपने अधीन सेना के दो भाग करके उन्हें झांसी और ग्वालियर में बंदोबस्त रखने के लिए भेजने का निश्चय किया। युद्ध में लगातार कड़ी मेहनत करने के कारण सर ह्यू रोज बहुत थक गए थे, इसलिए आराम करने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर बंबई लौट जाने का निश्चय किया। तारीख 1 जून को उन्होंने अपनी सेना का फिर प्रकट तरीके से गुण गाया और सैनिक लोगों को धन्यवाद दिया। इस बार रो साहब ने कहा, अंग्रेजी सेना के आज्ञा पालन और प्रबंध के कारण ही सब जगह जीत प्राप्त हुई है। उन्होंने अंग्रेजों की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि विरोधी पक्ष की सेना में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रह गई थी और ये सारी गड़बड़ का कारण हुआ। इसीलिए पेशवा की सेना की प्रबल शक्ति, अद्वितीय शौर्य और अनगिनत युद्ध सामग्रियों का कुछ उपयोग नहीं हुआ। यही कारण है कि उनके असंख्य आदमी मारे गए और अंग्रेजों की थोड़ी सी सेना को ये यश मिला। वास्तव में काल्पी के समान प्राकृतिक सुरक्षित जगह और 84 गुंबज के मैदान के समान इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भूमि में हजारों पौंड बारूद, सैकड़ों तोपे एवं अनगिनत सेना के होने पर भी प्रतापशाली पंत प्रधान शमशेर बहादुर और सूबेदार शिवाराम भाऊ के समान वीर योद्धाओं के वंशजों को थोड़ी सी अंग्रेजी सेना के सामने भागने का ये दुर्धर प्रसंग क्यों आया? इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि इसका मुख्य कारण कुप्रबंध ही था, अथवा कुप्रबंध कहने की अपेक्षा इसको दुर्दैव कहें तो भी ठीक है। एक बार जहां दुर्दैव घेर लेता है, वहां फिर किसी का वश नहीं चलता। एक कवि ने कहा है, दैव के प्रतिकूल होने पर जल निधि में जल नहीं मिलता, अमृत के अनंत सागर चंद्रमा में सुधा की बूंद नहीं मिलती, प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष के पास जाने से भी वांछित सिद्धि नहीं होती, और सोने के मेरु पर्वत में सोने का एक टुकड़ा नहीं मिल पाता।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।